होशे अध्याय छे। तब वे कहेंगे, होशे अध्याय छे पद एक, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। वे परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे और आपस में एक दूसरे से ये कहेंगे, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वो चंगा भी करेगा। होशे अध्याय छे पद दो, दो दिन बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। ये आकर्षक भविष्यवाणी है, क्योंकि यदि आप इसराइल के इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि वो 2000 वर्षों से एक राष्ट्र नहीं रहा है। पत्रस कहता है कि परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इस प्रकार यहां कहे गए दो दिन 2000 वर्ष हुए। इसराइल के इतिहास में ये सच है कि वे 2000 वर्षों तक तितर बितर रहे। तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, अर्थात तीसरे 1000 वर्ष में जिसे आज हम देख रहे हैं उसका पुनरुद्धार हो रहा है, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। ये उस समय की भविष्यवाणी है जब प्रभु आकर पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। इस 1000 वर्ष के प्रभु के राज्य में इसराइल का प्रमुख स्थान होगा और परमेश्वर बाइबल की उन सब भविष्यवाणियों को पूरा करेगा जो अधूरी रही होगी। सबसे पहले तो उनकी सीमाओं का वहां तक विस्तार होगा जहां तक परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दी हुई है। दूसरा कि दाऊद के सिंहासन पर सदाकाल का राजा बैठेगा जो न्याय और धर्म की स्थापना करेगा। ये मसीह और उसका राज्य होगा। ये बड़ी रोचक भविष्यवाणी है यदि हम 1000 वर्ष को परमेश्वर का एक दिन माने। इसका प्रमाण देखने को भी मिलता है। आप कहेंगे, आप कैसे 1000 वर्ष को एक दिन मानकर चल सकते हैं? क्योंकि इस हिसाब से गणना ठीक बैठती है। यदि हम शाब्दिक अर्थ के अनुरूप दो दिन और तीन दिन मानकर चले तो दो तीन दिन में तो ऐसा हुआ ही नहीं था। ऐतिहासिक सत्य तो ये है कि वे 2000 वर्ष तक तितर बितर रहे और अब जाकर उनका पुनरुद्धार हो रहा है, परंतु अभी उनका वो तीसरा 1000वां वर्ष आरंभ नहीं हुआ है। ये मानवीय इतिहास का 7000 वर्ष होगा, क्योंकि बाइबल के अनुसार 6 वर्ष के बाद दास को स्वतंत्रता दी जाती थी। इस प्रकार इसराइल का वो तीसरा दिन जब वे परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे मानव इतिहास के सन 7000 के आरंभ के साथ होगा। इस 7वीं सहशताब्दी में मसीह यीशु दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, तब वे उसके सम्मुख रहेंगे। होशे अध्याय 6 पद 3, आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। ये इसराइल के लिए महिमामय प्रतिज्ञा है, जैसे पृथ्वी के लिए आरंभिक और अंतिम वर्षा आशीष का कारण होती है, वैसे ही इसराइल के लिए अंतिम दिनों में आशीषें होंगी। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर फिर से इसराइल पर अपना चेहरा चमकाएगा। उस समय की आशीषें महिमा से पूर्ण होगी। प्रेरित पौलुस कहता है, यदि उनके काटे जाने से अन्य जातियों को महिमा और उद्धार प्राप्त हुआ है तो उनका पुनरुद्धार कैसा होगा? पूरे संसार का ही महिमामय पुनरुद्धार होगा। ये मसीह के 1000 वर्ष के राज्य में होगा। परमेश्वर उत्तरी राज्य को कह रहा है। होशे अध्याय 6 पद 4, हे एप्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? फिर वो यहूदा से कहता है। होशे अध्याय 6 पद 4 में आगे लिखा है, हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेह के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। भोर के मेह कुछ समय के ही होते हैं, जो ही सूर्य उदय होता है वे विलोप हो जाते हैं। इसी प्रकार इसराइल और यहूदा का विभव भी अल्पकालीन ही था, वे भी शीघ्र ही नाश होने वाले थे। होशे अध्याय 6:5-6। इस कारण मैंने भविष्यद् वक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुलाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। वे अपनी आराधनाओं में तत्पर थे, परंतु उसमें श्रद्धा नहीं थी। परमेश्वर उनमें दया की भावना को और अपने ज्ञान को खोज रहा था, परंतु उनमें ऊपरी दिखावे की अपेक्षा कुछ नहीं था। वे बलिदान चढ़ाते थे, वे होम बलि भी चढ़ाते थे, परंतु उनका मन परमेश्वर में अवस्थित नहीं था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में मसीह यीशु एफेसुस की कलीसिया को कहता है कि वह उनके कामों को जानता है, परंतु तुम में पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। आज भी ऐसी अनेक सक्रिय कलीसियाएं हैं, उनकी अनेक कमिटियां हैं। यदि कोई अपने उत्तरदायित्व से चूकता है तो उन पर उंगली उठाने वाले भी अनेक हैं, परंतु वे सब भावनाओं से रहित हैं। मसीह यीशु कहता है, तुम में पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। ए प्रेम और यहूदा की यही हालत थी। तुम चढ़ावा चढ़ाते हो, होम बलि चढ़ाते हो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। ये औपचारिकता से अधिक आवश्यक है। होशे अध्याय 6:7-9 तक। परंतु उन लोगों ने आदम की नाई वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। गिलाद नाम गड़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, वो खून से भरी हुई है। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में वध करता है, वरन उन्होंने महापाप भी किया है। याजक गण दोषी थे और वे लुटेरों की नाई थे। वे शरण के नगरों में भागते हुए लोगों को घात करके मार डालते थे। होशे अध्याय 6:10-11। इसराइल के घराने में मैंने रोए खड़े होने का कारण देखा है, उसमें एप्रेम का छिनाला और इसराइल की अशुद्धता पाई जाती है। और हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है।